की सेवा में तत्पर रहती है, आनंद से उनका समय निकल रहा है, वन विहार होता है, कभी इधर घूमते कभी इधर घूमते हैं। उस वन में रहने वाले कुछ ऋषि मुनियों ने विचार किया, अरे आप तो जवानी रामायण आन बूढ़ा हो गया, संसार को भोग भोगी को नहीं, ऐसे को वन में आकर के भी लोगों नशा तरा कर कैसे भोग भोग रहा, कितो आनंद कर रहा, हमको भी संसार का सुख भोगना चाहिए, क्या त्याग में पड़ा है। जैसे ये स्त्री को साथ में रखते हम भी औरतों को साथ में रखेंगे, हम भी औरत को साथ में रखेंगे, संसार का भोग देखेंगे भोगेंगे और उसके बाद में फिर तपस्या देखी जाएगी, ऐसा मन में उन्होंने बैठ करके एक बार सलाह की तो विचार किया कि अब बुढ़ापा में लुगई लावा कटो कौन दे ही है। एक तो साधु ठहरिया, एक बुढ़ा पन्यारो आएगा, जवानी वह तो कहते फिर भी कोई दे दे, वह तो कोई नहीं, कोई ब्याह हो तो छोड़ तो जमाटा ही दे दे, वो बात है नहीं, वृद्ध हो चुके हैं और हमारे को देगा कौन, औरत लाएंगे कहां से भोग भोगने के लिए। तो किसी एक ने उपाय बताया, देखो 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 मुझे एक युक्ति है मालूम है, सुनी मैंने एक बात, ये जो रामचंद्र जी है ना ये बड़े चतुर है, ऐसे जादूगर है, अगर कोई पत्थर लेकर के इनके चरणों में छुआ दो तो औरत बन जाती है, इनके पत्थर को छूने से औरत बन जाती है, पहले बन चुकी है। इसलिए अपन लोग भी क्या करें, जो अपन को अच्छा पत्थर लगे वो लेके आ जाओ और प्रणाम करने के बहाने इनके चरणों में हम नमस्कार करेंगे, वो पत्थर इनके चरणों को छुआ देंगे तो सहज में हमारे को औरतें मिल जाएंगी बिना कोई की गर्ज किए। दूसरे ने कहा हाँ ये अहल्या जो बनी थी ना वो वास्तव में ऐसी सुंदर बनी थी, ऐसी सुंदर बनी थी, इनके चरणों के छूने से बनी है, इसलिए सबने कहा ये उपाय बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, हम तो ऐसा ही उपाय करेंगे। तो अब चलो पत्थर लेकर के आओ अपने अपने पसंद का, अब काला पत्थर ले वहां तो काली लुगाई मिली, इसलिए मकरण है ठेठ उठो लेने वास्ते, सफेद पत्थर गोरी स्त्री चाहिए, इसलिए वहां से खोज करते करते जहां पर सफेद पत्थर की खदान हो वहां पहुंचे बेचारे, ढूंढते भटकते, तपस्या छोड़ी, भजन छोड़ा, साधन छोड़ा, इस विषय के लिए क्या क्या नहीं छोड़ते, सब कुछ छोड़ दिया, लाज छोड़ी, शर्म छोड़ी और सारी मर्यादा छोड़ी, इस प्रकार कई दिनों के भटकते भटकते जहां जो आकर के सुंदर पत्थर लगा, हाँ ये ठीक है, उसका ये मैं ले लेता हूं, उससे ये मैं ले लेता हूं, ऐसे कई थे सब झुंड का झुंड ऋषियों का, वो पत्थर उठा करके अपनी झोली में ले लेकर के वापस चले गए। अब इतने दिनों में तो रावण आया और सीता को लेकर के चला गया, सीता जी का हरण हो गया, और अब सीता जी के हरण होने के बाद में राम जी वन वन में भटक रहे हैं, हे सीते करते हुए आंखों में आंसू गिरा रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। लक्ष्मण जी उनको धैर्य दिलाते हैं, महाराज मिल जाएगी, नहीं कब मिलेगी पता नहीं, ऐसे रो रहे हैं। उसी समय वो पत्थर लेकर के ऋषि मुनि पहुंचे, उन्होंने देखा करे लुगई के लिए रोड़े भी पड़े दिखे हो रे, अब माने ब्याह को नहीं करना, अब एड़ी लुगई माने नहीं चीज है भाई रे, काम भी को नहीं, बाटा लाया जो हैंग फेंग दिया, अच्छा आज लुगई कहीं काम रही, जो रोवाने भी सही, हमने देखा केवल संसार का आनंद प्रदान करने वाली होती है स्त्री, लेकिन यहां दिख गया कि आनंद के साथ में दुख भी साथ में लेकर के आती है, इसलिए ऐसे दुख में नहीं पड़ना, अपना इरादा बदल दिया, वापस अपनी अपनी कुटिया में जाकर के भजन साधन में लग गए, आनंद भजन साधन में तल्लीन हो गए, बस क्या करें भाई। तो इस प्रकार राम जी स्वयं बताते हैं कि राम विवल वन माए कवन समृतियों कारण, क्या वो समर्थ नहीं थे, सीता को जहां कहीं थी उसी जगह हाथों हाथ प्रकट करके ला सकते थे, लेकिन जानबूझ करके तो उन्होंने सीता को अग्नि के सुपुर्द करके छुपा के रख दिया और लोगों के दिखावटी रूप में रोना धोना चालू कर दिया। ये माया का जादू पर्दा ऐसा फैलाते हैं, कुछ पता नहीं चलता उस परमात्मा के लिए लगा। अगस्त ऋषि बलवान, गड़े में से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि, पानी में मीन पियासी सो बात हो गई, अगस्त ऋषि को प्यास लगी, गड़े में पैदा होने वाले को पानी को कभी प्यास लगती है क्या? लेकिन अगस्त ऋषि को प्यास लगी, प्यासे हुए और जो पानी पीना चालू किया तो सात समुद्र का पानी किया, सातों समुद्र का पानी पी गए, गटका गए, पानी में पानी मिला लिया। ये सब परमात्मा की माया ने तो और क्या है। मारकंड देखो सकल कवन चरित्र ताको भयो। मारकंडे ऋषि कितनी कठोर तपस्या करने वाले थे, जिनके साक्षात नर नारायण भगवान जिनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने उनको वट वृक्ष के ऊपर दर्शन दिए, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेश यंतम वटस्य पत्रस्य पुटेश्य अनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। वो प्रलय काल के जल के समय में वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर विराजमान होकर के बालकृष्ण भगवान ने मारकंडे जी को दर्शन दिए। वो महान प्रलय, उस प्रलय में भी जो मरने वाले नहीं, ऐसे दीर्घायु हुए मृकंड ऋषि मारकंडे जी। मारकंडे जी दीर्घायु क्यों बने आपको पता ही होगा ना। देखिए एक प्रसंग आता है इस विषय में। मृकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी, इनके मारकंडे जी के पिताजी का नाम था मृकंड ऋषि, उनके संतान नहीं थी। तो संतान नहीं होने के कारण से उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की, शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान आशुतोष ठहरे बाबा, आकड़ा धतुरा और पानी आऊं राजी हो जाए महादेव जी। तो प्रसन्न हुए शंकर भगवान, बोले कहो मुनीश्वर क्या चाहिए? महाराज एक संतान की कामना है। शंकर जी ने कहा बोलो कैसी संतान की इच्छा है बताओ। दो तरह की संतान मैं दे सकता हूं, जिसमें तुम चाहोगे वैसी संतान दूंगा। दो तरह की कैसी? एक संतान तो ऐसी है जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी, उम्र बहुत लंबी होगी, परंतु दुर्गुण दुराचारी होगा। वो लंबी उम्र वाला दुर्गुण दुराचारी होगा, जैसे असुर लोग गंदा खान पान करते हैं वैसे, गंदा बोलने वाला, गंदी रहन सहन वाले, इस प्रकार के वो होते हैं। बड़ी उम्र वाला तो ऐसा होगा, एक होगा छोटा, छोटी उम्र वाला, वो सदगुणी होगा, वो गुणग्राही होगा, हरेक का गुण ग्रहण करेगा और अपने आचरण से माता पिता को और सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा। बात सुनकर के मृकंड जी ने कहा तो महाराज छोटी उम्र कितनी? छोटी उम्र 5 वर्ष की, सिर्फ 5 साल जिएगा वो, और लंबी उम्र वाला तो लाखों वर्ष तक जिएगा। मृकंड जी ने कहा महाराज मुझे छोटी उम्र वाला दे दीजिए, कपूत बेटो कहीं काम रहो, लाख वर्ष जियोड़ो ही, जो नहीं तो खुद सुखी नहीं दूसरों को सुखी कर सकता वो ऐसा पुत्र किस काम का महाराज। इससे अच्छा है छोटा छोटी उम्र वाला जो किसी को संताप तो नहीं दे, इसलिए मुझे छोटी उम्र वाला ही पुत्र दे दीजिए। तथास्तु जैसी तुम्हारी इच्छा मनोरथ सफल होगा। ये बात उनको बता दी और शंकर भगवान हो गए अंतर्ध्यान। शंकर जी के वचन के अनुसार समय पर उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बालक का जन्म हुआ। मृकंड जी ने आयु का दिन बराबर उस दिन गिन लिया कि आज इसका जन्म हुआ है, 5 वर्ष तक इसकी उम्र है। तो शरीर जन्म लेने के बाद में ही उम्र गिनी जाती है, गर्भ में आते समय उम्र नहीं गिनी जाती, इसलिए 5 वर्ष की उम्र उसी दिन से बराबर दिनों से गिनने लगे। बालक जो उसके अच्छे संस्कार किए गए, अच्छे संस्कार दिए गए, अच्छी बातें बताई गई, उन अच्छी बातों में उन्होंने एक उनको बात बता दी कि बेटा तुम्हारे सामने कोई भी आवे, आदमी आवे, औरत आवे, बालक आवे, बुढ़ा आवे, पशु आवे, पक्षी आवे, उनको प्रणाम करते रहना, उनको प्रणाम करना, जो भी आवे उसको वंदन करते रहना। इस प्रकार ये तुम करते रहना। बच्चे को तो भाई टेप रिकॉर्ड में जो आवाज भरो जैसे उसमें भर जाएगी, टेप रिकॉर्ड मना थोड़ी करो, उसमें फागण का हो, फागण का गीत भरो तो भरी जाए और भगवान कीर्तन भक्ति का भजन भरो तो भरी जाए। बालक को संस्कार जैसे माता पिता देते हैं वो संस्कार उसमें भरते हैं। यद्यपि भाजने लगना संस्कार और अन्यथा भवेत, वो बात बताई जाती। चलो बालक ने उनकी बात मान ली और जो कोई भी दिखे उसको प्रणाम करना चालू कर दे, मस्तक झुका करके और सिर नवा करके नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण भगवान को नमस्कार है, मतलब आप नारायण है मैं आपको वंदन कर रहा हूं, ऐसे नाम भगवान का उच्चारण करते हुए वो प्रणाम करने लगा। सब कोई बड़ी आदत ही पड़गी जब जो भी आवे उसको वंदन करना। कुछ दिनों में एक दिन स्वाभाविक भ्रमण करते हुए सनकादिक ऋषि आ गए। सनकादिक ऋषि है जिनकी उम्र 5 वर्ष की है, कोपिन भी पहनते नहीं है, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं स्वाभाविक ही, सबका बड़ेरा है परंतु उम्र वाली 5 साल की है, उम्र ज्यादा नहीं बड़े वाली, क्योंकि वे हमेशा हरि कीर्तन करता रहे हो, भगवान को कीर्तन करते रहते हरि कीर्तन में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी उम्र सदैव 5 साल की ही बनी रहती है, ज्यादा उम्र उनकी होती ही नहीं है। वे चारों सनकादिक ऋषि भ्रमण करते हुए, क्योंकि उनका नियम है दिन की सत्संग करने के लिए तो चले आते हैं बद्रिकाश्रम में और रात की सत्संग करने के लिए चले जाते हैं शेष भगवान के पास, दिन रात सत्संग में ही समय बीते ये उनका नियम। तो वह उस स्थान से विचरण कर रहे थे जहां पर वो मृकंड का बेटा मारकंडे ही बैठा था, मारकंडे के पास में से वो बालक चारों जो बालक थे साथ में गुजरने लगे तो उनको देख करके नमो नारायण कह करके उनको प्रणाम कर लिया। अब बालक को प्रणाम करते देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता पैदा हुई, उन्होंने अब प्रणाम करने के बाद में कुछ न कुछ तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है, चिरंजीव हो, उन चिरंजीवियों ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव हो। अब उनको क्या पता कि इसकी छोटी उम्र है, लेकिन स्वाभाविक ही उसकी तो उम्र भगवान को बढ़ानी थी, इसलिए क्योंकि नमन की जो विद्या है वो सदा ऊपर बढ़ाती है, नवे सुभारा हो जो नमन है ना वो हमेशा बजनी बढ़ा देता है, बजनी चीज होती है सदा झुक करके रहती है। चलो वो आशीर्वाद देकर के चारों ऋषि चले गए, बालक दिनों दिन बढ़ता गया, 5वें वर्ष की आखिरी दिन की अवधि आने वाली थी। उस दिन मृकंड जी ने बेटे से कहा बेटा चल साथ में चलो, शंकर भगवान के मंदिर में उसको लेकर के चले गए और बैठा दिया, तुम यहां पर बैठ करके आज इनको नमस्कार करते रहना जो आज्ञा। बालक को वहां पर बैठा दिया, अपने काम में खुद कहीं चले गए। इधर जो ही उम्र का समय 5 वर्ष का पूरा हुआ, यमदूत लेने के लिए मंदिर के द्वार पर चले आए, दरवाजे तक तो आ गए परंतु मंदिर में अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। जहां भगवान का नाम उच्चारण होता, मंदिर में तो भगवान का नाम उच्चारण होता ही है, जहां हरि कीर्तन होता है वहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, बाहर खड़े रहे बहुत देर तक कि बालक बाहर आवे तो हम इसको लेके जाएं, लेकिन वो तो उनको अंदर बैठा दिया तो यहीं बैठे रहना, बाहर आना ही मत, तो बाहर कैसे आ रहे। अब यमदूत काफी देर तक खड़े रहे, वापस लौट करके चले गए। यमराज जी से कहा महाराज आज जिससे लाने के लिए हम गए थे वो एक बालक शंकर भगवान के मंदिर में बैठा हुआ है, अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, इसलिए हम क्या करें महाराज। यमराज जी ने कहा तो भाई ऐसा करो ये तुम नहीं ला सकते तो इसके लिए मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद वहां जा रहा हूं, ये काम मैं करूंगा तुम छोड़ो, क्योंकि हम लोग समकक्ष हैं बराबरी वाले हैं, ना तुम नहीं जा सकते वहां पर मुझे जाना है। ये बात बता दी। शंकर भगवान के मंदिर में जाने के लिए यमराज जी भैंसे पर बैठ करके चल दिए, मंदिर के दूर ही भैंसा छोड़ दिया और आप मंदिर के द्वार पर चले आए। द्वार पर आए, अंदर आने लगे, लाल लाल जिनकी आंखें हैं, हाथ में मुकदर लिए हुए, बड़े डरावने भयावन शरीर से अंदर आने लगे। बालक की नजर पड़ी उन यमराज जी पर, एकदम चिल्ला उठा शंकर भगवान के उस मंदिर में पिंडी को पकड़ करके, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, जोर से उनको पकड़ लेता। बालक डरता है तो अपने माँ है तो माँ को पकड़ेगा, बाप है तो बाप को पकड़ेगा, और किसे पकड़ेगा। तो वो बालक बचाव के लिए और किससे पुकार करे, शंकर भगवान की पुकार करने लगा, त्राहि माम रक्षा करो रक्षा करो महाराज रक्षा करो, जोर से आतुर होकर के, जो ही भयभीत होकर के बालक ने पुकार किया, आंखों में आंसू, हृदय की पुकार सुनकर के शंकर भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, भोलेनाथ प्रकट होकर एकाएक के सामने आ गए। इधर यमराज जी खड़े, इधर शंकर भगवान खड़े। यमराज जी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और शंकर ने कहा, कहो यमराज जी इधर कैसे आए आज। महाराज इस बालक की उम्र पूरी हो गई है, इसलिए इसे ले जाने के लिए आया है। यमदूतों को भेजा, वो लोग तो अंदर आ नहीं सके, परंतु अब इसे ले जाने के लिए मैं स्वयं आया हूं। इसे आदरपूर्वक में आपका भक्त होने के कारण आदरपूर्वक इसे लेके जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, रे तुम मूर्ख हो, इसकी उम्र पूरी कहां हुई है। क्यों महाराज, आपने कहे थे ना कि 5 वर्ष की इनकी उम्र होगी। बालक की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष। ये आपके तो दिए 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष आज पूरे हो गए, इसलिए मैं इसे ले जाना चाहता हूं। मेरा काम है तो ये काम मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे, मूर्ख तुझे समझ में नहीं, मेरे दिए 5 वर्ष है तो मैं कोई संसार के वर्ष दूंगा, मैं अपनी उम्र के 5 वर्ष इसको देता हूं। मेरी आयु जितनी बड़ी है, मेरी आयु के समान 5 वर्ष जिस दिन पूरे हो जाए उस दिन लेके जाना, अभी नहीं ले जा सकते तुम, जाओ हटो। और भाई शंकर भगवान के 5 वर्ष कद पूरा बैठा है, उम्र का हिसाब कभी सुना है आप लोगों ने। देखो इनका हिसाब, उम्र का हिसाब बता दें आपको। भगवान नारायण के नाभि में से, भगवान विष्णु के नाभि में से कमल का फूल पैदा होता है, उस पर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। भागवत में आएंगे आप कथा सुनेंगे। और ब्रह्मा जी की प्रकृति से शंकर भगवान प्रकट होते हैं। ये तो इनकी ब्रह्मा विष्णु महादेव जी के जन्म की बात। तो विष्णु से बाद में जन्म लिया ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा के बाद में जन्म हुआ है शंकर का। तो आपको मालूम ही है, जो हमारे बड़ेरे थे पूर्वज थे उनकी उम्र होती थी इतनी हमारी उम्र नहीं, और जितनी हमारी उम्र है उतनी हमारे बाद में पीढ़ी की उम्र नहीं। जो बाद में आते हैं उनकी उम्र छोटी होती है, स्वाभाविक धीरे धीरे घट रही है। सतयुग में प्राणियों की जितनी उम्र होती थी इतनी त्रेता युग में नहीं, त्रेता युग के प्राणियों की उम्र के बराबर द्वापर युग वालों की नहीं, और द्वापर युग के बराबर वालों की कलयुग की नहीं। सबकी उम्र हमारे तो केवल 100 वर्ष के पहले थक गई है ना, जबकि द्वापर में 125 वर्ष की भगवान श्री कृष्ण की उम्र प्रकट आती है भागवत जी के अनुसार। तो वैसे बाद में आने वालों की उम्र स्वाभाविक कम होती है, तो शंकर भगवान की उम्र सबसे छोटी होनी चाहिए, परंतु यहां पर उल्टा हो गया, शंकर की उम्र सबसे बड़ी हो गई। कैसे हुई है देखो, ये केवल भजन का प्रताप है। कैसा है, एक हमारे उम्र के हिसाब से आप हिसाब लगाओ, हमारे 24 घंटे पूरे होते हैं तब एक दिन रात बनता है, 24 घंटे का दिन और रात, और दिन रात करते करते जब 30 दिन रात पूरे होते हैं तब एक महीना बनता है, 2 महीने की एक ऋतु हो जाती है, 3-4 महीने का एक मौसम बनता है, 6 महीने का एक आयन बनता है, और 12 महीने का एक वर्ष बनता है। 12 महीने में 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण है देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। तो हमारे 12 महीनों के बराबर देवताओं का एक दिन और एक रात हुआ, याद रखना। बारह महीनों के बराबर देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। तो देवताओं का एक दिन रात हुआ बारह महीनों के बराबर, तो 360 जब हमारे वर्ष बीतेंगे तो देवताओं का एक वर्ष बीतेगा। 360 वर्ष के बराबर देवताओं का एक वर्ष, और एक वर्ष होते होते देवताओं की उम्र होती है 100 वर्ष की। तो इस 100 वर्ष में एक देवता की उम्र खत्म हो जाती है, फिर दूसरा देवता का जन्म होता है, दूसरा देवता आता, तीसरा है। ऐसे जिस समय 72 बार देवता खत्म हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 72 बार चौक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है इतने देवताओं के बराबर में। अब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है, अर्थात 4000 युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये कुल मिला के 4000 युग होते हैं। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, वो याद रखो। एक ब्रह्मा जी के दिन में इतने युग हो गए और इतनी फिर ब्रह्मा जी की रात, 8000 युग के बराबर ब्रह्मा जी के दिन और रात हुए। अब दिन रात करते करते ब्रह्मा जी की भी उम्र बढ़ती रहती है, उनका भी महीना होगा और वर्ष होगा, 100 वर्ष होंगे तब एक बार ब्रह्मा जी मरेंगे। एक बार ब्रह्मा जी के मरने में 35 करोड़ भगवान के अवतार हो जाते हैं। भगवान के जो 35 करोड़ अवतार, 10 अवतार के हिसाब से, और ज्यादा नहीं, 24 अवतार नहीं, 10 अवतार जो होते हैं ना, मत्स्य कृष्ण भरा इत्यादि, उनके हिसाब से केवल, तो उनके 35 करोड़ ब्रह्मा जी के उम्र में भगवान के अवतार एक उम्र में। और जब ब्रह्मा जी 1 करोड़ बार ब्रह्मा जी जन्म करके मर जाते हैं तब विष्णु भगवान की एक घड़ी होती है, ध्यान है नहीं? 1 करोड़ बार ब्रह्मा जी जन्मेंगे और मरेंगे तब विष्णु भगवान की एक घड़ी। और एक घड़ी भी ये कौन सी घंटा नहीं, अपनी 24 मिनट वाली घड़ी जो पंचांग में चलती है, वो ऐसी घड़ी करते करते उनके भी दिन रात हो गए। दिन रात होते होते महीने बढ़ेंगे, वर्ष बढ़ेंगे, फिर वर्ष करके उनकी भी उम्र होगी। तो 35 लाख बार जब विष्णु भगवान के अवतार होते, आयु पदम सुतमाही, वो तो हो गए। और जिसमें 12 लाख विष्णु हुई जावत शंकर अर्ध घटी जानो, 12 लाख बार विष्णु भगवान का जन्म होता और मरना हो जाता, तब जाकर के शंकर भगवान की आधी घड़ी होती है। आधी घड़ी और 12 मिनट, 12 लाख विष्णु के बराबर केवल 12 मिनट आधी घड़ी है। और इनसे भी उम्र ज्यादा और है कोई की, और मत सोचना कि ये सबसे बड़े ही है। अब उनके भी आधी घड़ी के बाद में घड़ी और दो घड़ी सब होते, 5000 बार महादेव जी जन्म लेकर के खत्म हो जाएंगे, तब माया का श्रृंगार होगा। प्रकृति है ना परमात्मा की, इसका केवल श्रृंगार टीका टमका हो, छोटी बात तो गुनती जाए, नहीं तो टेम लागे हो। 5000 महादेव जी के बराबर, और वो लाखों बार लाखों माया खत्म हो जाती है, जो उसमें ब्रह्म, जो परमात्मा, जिसको कि परम बंधन कहते हैं, वो परम परमात्मा उसकी एक पलक झपकती है बस। लाखों बार लाखों गिनती खत्म होगी यहां पर, कोई कैलकुलेटर है नहीं जो वहां तक पहुंच सके। इस तरह आप सोचिए, विष्णु भगवान के बाद में उम्र इनकी बड़ी हो गई, आदम बाबा शंकर भगवान की। अब उनकी कब वो 5 वर्ष की उम्र पूरी हो गई महादेव जी की, कद वे मारकंडे जी भरे भाई, वो मारकंडे जी ऐसे दीर्घायु बढ़े। तो शंकर भगवान की उम्र बड़ी होने का कारण, वे राम भजन में लग जाते थे और एक बार श्वास लेकर के बैठ जाते तो बीते संबत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी, 87000 वर्ष के बाद में एक श्वास लेते थे महादेव जी बैठ करके भजन बैठ गए बस। और सांस लेवे तो मरे, सांस लिए बिना मरे की कर, तो उम्र अपना मोटी हो गई। भजन करने वाला महात्मा लोग भी अपनी उम्र ज्यादा यूं बढ़ा लिया करे कि साधना करता करता उम्र ने खत्म नहीं होने दे बराबर। बहुत छोटी उम्र, ज्यादा छोटी उम्र ने ज्यादा उम्र बढ़ा लिया करे कि खर्चो कम करे। बैठत बारे चलत अठारे शयन करत तंतीसा हो, बैठे बैठे आदमी के श्वास 12 से 15 समान रीति से, स्वस्थ आदमी के उम्र में 15 श्वास निकलते हैं। चलते फिरते मार्ग में चलोगे तो 18 से 20 श्वास निकलेंगे आपके, बैठने में चलने में फर्क हो जाएगा, और सोने में 30 श्वास खर्च होते हैं, और संसार के भोग भोगने में 60 श्वास खर्च हो जाते हैं। इतनी तेजी से श्वासों का खर्चा ज्यादा बढ़ता है, तो ज्यादा खर्चा बढ़ाएंगे तिजोरी जल्दी खाली हो जाएगी, और खर्चा कम होगा तो तिजोरी की पूंजी लंबे समय तक काम आती रहेगी। बस यही उपाय किया शंकर भगवान ने, भजन में लगे तो श्वास खर्च किए ही नहीं, तो उनकी उम्र बढ़ती गई, और इस प्रकार मार्कंडेय जी को है बड़ी लंबी आयु प्रदान हो गई। यमराज जी वापस चले गए, जो होकर महाराज आपकी उम्र के बराबर तो महाराज जरा कितनी बार जन्म ही नमर यमदूत यमराज यमराज जी है, तुम्हारी उम्र इतनी लंबी थोड़ी है, कितनी बार जन्मे मरे हमारे जैसे महाराज, मैं आपको कहीं नहीं कह सका, आज्ञा देव में जाऊं पाचा चला गया, उनको मुक्ति प्रदान की। और वैसे 5 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय जी भी अनंत वर्षों की उम्र वाले बन गए। ये नमन का प्रताप, उन्होंने शनकादिकों को प्रणाम किया, प्रणाम का प्रताप, भगवान का आश्रय रखा उसका प्रताप, और उस प्रताप से इस प्रकार उनका जीवन मंगलमय हुआ, उनका कल्याणकारी हुआ। बोली आनंद कंद भगवान की। मार्कंड देखो कल्प, कितने कल्प को उन्होंने देख लिया अपने जीवन में। कवन चरित्रता को भयो, ऐसे उनके चरित्र की तरफ विचार करो, प्रभु की माया है, क्या क्या काम नहीं करा देती है, विचार करो। अकर्ण कर्ण दयाल धन रोम कोट ब्रह्मण दयो, वे अकर्ण कर्ण है, जो नहीं होने वाला काम है उसे भी वे कर दिया कर देते हैं, और एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड उनके मौजूद रहते हैं, एक रोम छिद्र में एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ ब्रह्मांड मौजूद रहते हैं एक बाल में, बताइए उनको कोई कैसे पहचान सकता है। बस उनके शरण होने पर ही हम उनका आनंद प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। जब दे लोक प्रसिद्ध एक क्षण में दर्शन, क्षण में कंदा धुंध आप भूलाना, एक समय अज देख शिष्ट करना मैं करता, और मुनि करुणा संपाय शिष्ट बिन बंकी धरता, कर सावत सकर साव सवात जुग उड़ चले, अष्टानन विद सम गए अद्भुत होय षोडश वदन दुगण दुगण मिलते भय। एक बार की बात है, 14 लोक जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सबको परमात्मा एक क्षण मात्र में हमको दिखा सकते हैं, ऐसे प्रबल है परमात्मा की शक्ति कि जो 14 लोकों को एक क्षण में हमें प्रत्यक्ष में दिखा सकते हैं, बताइए। और क्षण में अंधाधुंध, क्षण में प्रलय कर देते, जो सामने है वो चीज गायब कर देते, पता ही नहीं कहां चली जाती। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे, देखो मैं सृष्टि बढ़ाने का काम करता हूं, यदि ये मैं काम नहीं करूं तो सारी सृष्टि परमात्मा का सारा काम धंधा लेन देन बंद हो जाएगा, मैं नहीं बढ़ू तो मेरे समय और बढ़ाने वाला है कौन, इसलिए तो मैं वास्तव में विष्णु, मैं भी बढ़ाता हूं तो विष्णु पालन करते हैं, मैं बढ़ाता हूं तो शंकर श्रृंगार करते हैं, लेकिन मैं ही अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो किसका विष्णु पालन करेंगे, शिव जी श्रृंगार करेंगे, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा, ऐसे मन में थोड़ा अहंकार हो गया ब्रह्मा जी को, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। मुनि कर्ण समपाय शिष्ट बिन पंखी धरता, उस समय नारद जी ने, वो भी उनके सामने खड़े हैं, मुनि करुणा संपाय शिष्ट बिन पंखी धरता कर स्वाद, वहां नारद जी खड़े थे, उन नारद जी ने देखा कि आज पिताजी ऐसे हुंकार हुंकार क्या करते हैं, मैं बड़ा हूं, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आई। इतने में देखा तो एक पक्षी आया और आया तो वो लेकर के उस ब्रह्मा जी को लेकर के करसवात ब्रह्मा जी को पकड़ करके अपने पंजे में आकाश में उड़ करके चला गया। ब्रह्मा जी अभी तो देख रहे थे कि मैं सृष्टि को बनाने वाला हूँ, तो सृष्टि में तो सब चराचर आ गए, पशु पक्षी सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि में आते हैं, तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। परंतु जय यो ही अभिमान आया कि पक्षी एक करके आकर आया, ब्रह्मा जी कोई पकड़ करके लेके उड़ गया आकाश में, चील कोई ऊंदरे ने पकड़ ले जावे जिनते। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये कौन आ गए, ये कौन, ये कौन, ये कौन, मुझे कौन ले जा रहा, कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ऐसे ऊपर चक्कर में पड़ गए। करसवाद जो उड़ चले वो पक्षी और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उड़ते गए, उड़ते गए, उड़ते गए, आगे पहुंचे तो ऐसी जगह पहुंचे जहां पर आठ मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी के मुंह थे चार, और जहां पहुंचे हैं उस जगह ब्रह्मा जी के मुंह हैं आठ। ब्रह्मा देखने लगा, मैं चार मुंडे मारे पीछे तो दुगुना मुंडे वालों बैठो, मैं कहीं गिनती में कौन ही नहीं, ओहो मारे तो मोटा है अभी तक, मेरे से बड़े हैं यहां देखो, तो आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं। वाह भाई वाह, इसलिए मैंने फालतू में अभिमान किया। उन पहले नंबर वाले ब्रह्मा जी का अहंकार खत्म हुआ और अद्भुत हो ही षोडश बदन दुगण दुगण मिल मिल गए। अब वहां जो पहुंचे हैं तो आठ मुन वाले ब्रह्मा ने देखा, अरे ये भी ब्रह्मा है, ये चार मुंह वाला ये भी ब्रह्मा दिख रहा है, देखो ये ब्रह्मा, लेकिन मैं तो आठ मुंह वाला ब्रह्मा, तो मैं इससे कितना बड़ा हूं, मेरे से बड़ा और कौन होगा। इस तरह उन ब्रह्मा को अभिमान पैदा हो गया। अब आठ मुंह वाले ब्रह्मा को अभिमान पैदा हुआ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं। उस समय वही पक्षी दोनों ब्रह्मा को लेकर के उड़ गया आकाश में, वही पंखेरु आकाश में उड़ करके चला गया। चार वाले भी लटक रहे हैं, आठ वाले भी लटक रहे। आगे पहुंचे तो सोलह मुंह वाले ब्रह्मा जी मिल गए। आगे से आगे उस्ताद है भाई, कोई कोई मोटा मा तो मोटा तैयार है, और क्या जरूरत। बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव, सोलह वाले मुख वाले ब्रह्मा जी मिले। अब सोलह मुख वाले ब्रह्मा ने देखा, करे एक तो आठ मुंडे वाला और एक चार मुंडे वाला ब्रह्मा, लेकर मैं तो सोलह मुंह वाला, मेरे से बड़ा और कौन हो सकता है। वो पक्षी उसको भी लेकर के आकाश में उड़ चला। इस तरह सोलह वाले से आगे पहुंच गए बत्तीस वाले के पास, दुगने दुगने मुंह वाले ब्रह्मा जी मिलते गए, गिनती नहीं थी ब्रह्मा कितने ब्रह्मा मिलते गए, मिलते दुगुण दुगुण मिल मिल नहीं, दुगने दुगने मुंह वाले चारों तरफ देखे, एक जो सारे ब्रह्मा ही ब्रह्मा नाटक करे घूम रहे चारों तरफ, ब्रह्मा जी है, कोई दो चार वाला, कोई आठ वाला, कोई सोलह वाला, कोई बत्तीस वाला, कोई चौसठ वाला, कोई डेढ़ सौ वाला, कोई ढाई सौ वाला, इन प्रकार अनंत संख्या में हुआ बने। एक थकत एक बकत पंखी सबक ले जाना, दस आयुक्त कोड़ान वदन ब्रह्मा हर काना, सबको क्यों समाज अकल कल अवगत स्वामी, क्रोड़ा क्रोड़ अनेक कीट से हम बहु सुखामी, विलसाय मूर्छागत होई विधा, वह समाज पंखी नहीं, वंद वंद अपरम परम अति अगाध हरि मुनि कही। इस प्रकार वो ब्रह्मा जी एक को बाद में एक लेते लेते गए, जहां पर दस हजार मुंह वाले ब्रह्मा जी थे वहां पर पहुंच गए, उससे आगे बढ़ते गए तो एक करोड़ मुंडे वाले ब्रह्मा जी उनको मिल गए, एक करोड़ ब्रह्मा जी। सबको क्यों वहां पर आकर के सारे ब्रह्माओं को इकट्ठा किया, बकरा बाड़े ने इन प्रकार बाड़े में सारे ब्रह्माओं को इकट्ठा करके वहां पर, अब बोलो अब तुम में बड़ा कौन है बताओ, वो पक्षी पूछ रहा है। जो पक्षी सबको लेकर के चला जा रहा है वो उनको पूछ रहा है कि तुम में बड़ा कौन है। समय रूपी पक्षी है, ख्याल रखना, समय रूपी पक्षी सबको लिए जा रहा है, सबको लिए जा रहा है, सबको। आज तक कितने प्राणियों को लेकर के गया, करोड़ प्राणियों को लेकर के चला गया, जहां गए वहां पर वापस कोई गया सो वापस आया नहीं, पता ही नहीं कहां चला गया। इस तरह अब वो समय उनसे पूछ रहा है कि बताइए बड़ा कौन है, अकल कल अवगत स्वामी। अब सब ब्रह्माओं ने एक दूसरे को देख करके अपनी हार स्वीकार कर ली और हाथ जोड़ के विनय करने लगे, हे महाराज हम सब तुच्छ हैं, अब मालूम पड़ गया कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप हमसे बढ़कर के हैं, सर्वेश्वर हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम जो अहंकार करते हैं सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, ये हमारी बड़ी भारी मूर्खता है, अज्ञता है। इस अज्ञता को केवल आप ही कृपा करके दूर कर सकते हैं, आपके सिवाय इसे दूर कौन करेगा भगवान। अब वे सीधा आया लैंड मत आए गाड़ी, सबको की ओर समाज अकल कल अवगत स्वामी, करोड़ा करोड़ अनेक कोट से हम बहुकामी। आज हमें मालूम पड़ गया है कि आपके श्री विग्रह में करोड़ों करोड़ जो प्राणी हमारे जैसे मौजूद हैं, हम समझते हैं कि मैं समझता हूं कि मैं बड़ा हूं, ये मेरी ही बड़ी भारी मूर्खता है। एक एक ने अपने मुख से ये अपना अपराध स्वीकार किया, गरीबी आई, ज्ञान गरीबी आई, समझ में आई बात, तो विलसाय मूर्छागत होए विदा, ये समाज पंखी नहीं, इतनी बातें कही और कहने के साथ में ही वे बेसुध हो गए। अब हम कहाँ है कहाँ नहीं है, और इतने में देखा तो वहां पक्षी का नाम निशान नहीं है, सब अपने अपने ठिकाने पहुंच गए, सब अपने अपने ठिकाने आगे चलो सारा, जैसे कोई सपने में देखा हुआ दृश्य दिखता तो बहुत है, उस समय खूब लंबी चौड़ी दौड़ होती है, अनेक प्रकार की चीजों की प्राप्ति होती है, नहीं देखी ऐसी जगह भी पहुंच जाते हैं, पर तो आंख खुलने के बाद में देखा जाता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, वही दशा उन सारे ब्रह्मा गणों की हो गई। विलसाय मूर्छागत हुए विद समाज, वह समाज पंखी नहीं, वंद बंद अपरम परम अत अगाध हरिबुंद से, सब ने अपने स्थान पर बैठकर ही उस परम शक्तिमान परमात्मा को बारंबार वंदन किया, वंदन नमस्कार किया, प्रभु आपके चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते। इसलिए ये बात समझनी चाहिए, एक सास के मंज करोड़ करोड़ दर्शावे, ये सब वो जिसने प्रश्न किया नहीं कि नारद जी को इस प्रकार जो बोध था तो उन्होंने पूछा, क्योंकि इतनी भी जानकारी नहीं उनके पास में, कारण क्या हुआ, उसके उत्तर में सारी बातें ये बताई जा रही है। जो विषय अच्छी तरह समझ में खोपड़े में बैठ जाए जज जावे, इसी प्रकार तो समझाते हैं, दयाल जी महाराज के प्रसंग कई कई बड़े विचित्र हैं, अब उनको समझ पाना भी मुश्किल है तो क्या बतावे, लेकिन जो आ जाए उतना तो बता दिया जाए ठीक रहेगा ना। एक सास के मंज करोड़ करोड़ अंदर सावे, एक सास के मंज भूल नकचक में बजावे, कलप कथा इतिहास नहीं अनुसार होता को, संत कहे सोई साच मान ले वो मंदपा को, अनुकर्म ए धारणा तरण जीव गुरुदेव है, राम मंत्र भक्ति सदा परापरायण भेव है। वो परमात्मा एक ही श्वास में करोड़ों करोड़ प्राणियों का हमारे को दर्शन करा देते हैं, एक श्वास में हो। रामायण की घटना में जब काकभूषण जी को भगवान ने पेट में निगल लिया, तो अब उन्होंने ब्रह्मांड दिखाना चालू किया तो कितने कलप दिखा दिए, उभय घड़ी में दो घड़ी में केवल सारे ब्रह्मांडों का अनंत ब्रह्मांड कितने कलप बिता दिए दो घड़ी में। ये इसी प्रकार कहते हैं तो एक श्वास में कितने ही ब्रह्मांडों का दर्शन परमात्मा करा देते हैं, और एक श्वास में जो आप खुद पास में हो, आपके पास में जो मौजूद है उस सबको आप भुला देते हो, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, उसे ही पता नहीं रहता। ये वो विलक्षण शक्ति वाले परमात्मा है, वे एक श्वास में तो अनेक कल्पों की कथा इतिहास वो प्रकट कर देते हैं, जैसा कि संत महात्मा वर्णन किया करते हैं। इसलिए संत महात्मा जो कुछ बात कहते हैं उनकी बात को सत्य मान लेना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा उसमें अपनी इच्छा शक्ति प्रकट कर दिया करते हैं, इनके माध्यम से मेरा ज्ञान संसार में प्रकट होगा तो लोगों को इससे लाभ की प्राप्ति होगी। संत कहे सो साच मान ले वो मत पाकी, सिद्धांत का ये उत्तम तरीका है, ऐसा मन में सोच करके उनकी बात को जीवन में उतार लेना चाहिए। ये धारणा जीवन में गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हो सकती है, इसलिए राम महाराज का राम मंत्र है, इसको भजन करो और भक्ति को हृदय में धारण करो, यही परम कल्याण का सुंदर तरीका है। राम गर्भ प्रसाद भगत को भगत बधावत, गुरु महिमा गुरुदास आन चकचूर उड़ावत, जुग जुग भगत समाज जीव मार्ग विस्तारत, आप विलास प्रकाश साधु उपकार सारत, जुगल दाम एको सदा भगत प्रकट कारण स्वकरण, गुरु संज्ञा वायक विबल शिवर शिवर असर शरण। जो गर्भ का अहंकार करने वाले परमात्मा हैं, घमंड को खा जाते हैं। जो कोई भी घमंड करता है उस घमंड को चूर्ण कर देते हैं परमात्मा। गर्भहार करे परमेश्वर, इसलिए जिस किसी ने भी गर्भ किया उसका गर्भ तत्काल भगवान ने मिटा दिया है। खुराक ही भगवान की गर्भ ही है, गर्भ खुराक है उनके भैया। इसलिए गुरु महिमा जो के भगवान दास बने रहते हैं, जो गुरु महिमा का आश्रय रखता है अर्थात गुरु चरणों की शरणागति रक्षा करता है, उसके लिए भगवान अपना घमंड को नाश करना सब भूल जाते हैं। गुरु महाराज का घमंड भले ही करो, लेकिन संसार का, पदार्थों का, अपने बल बुद्धि का ये घमंड भगवान से नहीं करते। गुरु महिमा गुरुदास आन चकचूर उड़ावत, दूसरी सारी बातें तो घोट पीस करके जैसे पाउडर उड़ाते हैं इसी प्रकार उड़ा देते हैं, लेकिन उसके सामने वे खुद विनम्र बन जाते हैं, उसके सामने वे कुछ भी नहीं कहते हैं। युग युग भक्त समाज जीव मार्ग विस्तार, युग युगों में भक्ति के मार्ग का वे भगवान खुद उनको शक्ति प्रदान करते हैं, उनका साथ देते हैं और उस मर्यादा का वे विस्तार करते रहते हैं। साधु उपकार साधु संतों के लिए समय समय पर अवतार धारण करके उनका काम भी पूरा कर दिया करते हैं। जो काम वे खुद नहीं कर सकते संत महात्मा, वो कार्य स्वयं भगवान कृपा करके पूर्ण किया करते हैं। भगवान हो चाहे संत हो, ये नाम दो है लेकिन है वास्तव में दोनों एक ही। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये नाम अलग अलग बताते हैं लेकिन नाम अलग होने पर भी इनमें गुण अलग नहीं होते हैं, गुण सब में एक ही हुआ करता है। ऐसे परमात्मा को गुरु संज्ञा वायक विवल शिवर शिवन अशोषण, जो गुरु महाराज के रूप में हम उसी परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, ये हृदय में भाव रखो और उनका स्मरण करो, अपना अवश्य ही कल्याण होगा, निस्संदेह कल्याण होगा। कभी भी इसमें घबराने की डरने की बात नहीं है। नमो राम पर परम धर्म धर सहायक समरत, गर्त अर्थ सब उक्त जुगत गुरु आज्ञा अमृत, अखिल सकल कृत खेल कर्म उझेल विडारण, चरण शरण तर तरण एक अवगत सब कारण, नमो राम प्रेरक सदा कहा वंदन वंदन करूं, तो बताय जीवन अखर नमस्कार समृत गुरु। अरे समर्थ गुरु महाराज को वंदन करके हम स्वयं भी समर्थ हो जाते हैं। भू को चात चूर्ण कुर धड़ा जोड़ का काम, साध राम दोनों नमो अगमानंद अनाम। भूखा आदमी होता है, उस आदमी को पेट की भूख मिटाने के लिए अनाज की जरूरत होती है, आटे की जरूरत होती है। आटा तो उसको देओ नहीं, उसकी जगह उसके सामने रुपए सोने चांदी का ढेर करके रख दो, इससे तू भूख मिटा ले। क्या कभी भूख मिट सकती है? अरे भूख आटे से मिटती है, हाँ वो आटा भले ही उस रुपए से मिलो लेकिन भूख मिटेगी आटे से। इसी प्रकार भगवान वो रुपए के समान है, सोने चांदी के समान है, परंतु भूख मिटती है हमारी इन संतों से, संत महापुरुषों से, गुरु महाराज से। उनसे उन रुपयों के उपयोग की बात मिलेगी पर खुद उनसे भूख थोड़ी मिटेगी, वो रास्ता मिल जाएगा। इस प्रकार साध राम दोनों नमो अगमानंदा नाम। अब रुपए से आटे की प्राप्ति होती है, इसलिए रुपया भी अच्छा है और आटा भी अच्छा है, तो भगवान भी तो अच्छे हैं और संत भी अच्छे हैं, दोनों हैं। दोनों की इस प्रकार अनन्य गति है, अगम गति है, अगम अन्न प्रदान करने वाले हैं, नाम से रहित हैं। मीन नीर सुख आपनो, जल प्रेरक नहीं काम, ए विधि गुरु मुख सिमरबो सिख पावत विश्राम। पानी का संग पाते ही मछली को अपने आप आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद में पानी में पहुंचाने के बाद में अलग से मछली को आनंद देने की जरूरत नहीं रहती। अब इसको पहले तो पानी दिया और अब इसको आनंद प्रदान कर दो, अरे आनंद स्वाभाविक उसको प्राप्त हो जाएगा जब उसको पानी का संग मिल गया है। जिसका अभाव था वो अभाव की चीज मिल गई, उसकी पूर्ति हो गई, सब जो गड़बड़ी दूर हो गई। ए विधि गुरुमुख सिमरत, इसी प्रकार गुरुमुखी बन करके भगवान का भजन करना ये पानी मिल जाने के समान है। पानी मिल जाने के समान है, गुरुमुखी बन करके गुरु महाराज के वचनों के अनुसार भगवत भजन करो, नाम स्मरण करो, नाम जप करो। ये बात जब मिल गई है तो प्रेरणा देने वाले हैं गुरु महाराज, वो मिल गए, स्मरण करना चालू कर दिया तो अवश्य शिष्य को विश्राम की प्राप्ति होगी, निस्संदेह इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तत्सार सदगुरु सदा वायक विमल अगाध, मोक्ष मार्ग प्रगट कर्ण सिमर सने ही साध। तत्व जो गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज कृपा करके हमें भगवान के प्राप्ति का जो तत्व है, जो तरीका है, वास्तविक जो उसका सार चीज है, वो कृपा करके प्रदान कर देते हैं। सही रास्ता मिल जाने के बाद में वे मुक्ति का मार्ग हमारे लिए खोल देते हैं। वे केवल दूसरों की ऊपर कृपा करते करते इस कारण हमारे परम प्यारे उस नाम के प्रति हमारी श्रद्धा जोड़ देते हैं, नाम के प्रति हमारी भावना को प्रबल कर देते हैं। ऐसे उस नाम के साथ में जुड़ी हुई श्रद्धा को गुरु महाराज के शरण में रह करके प्रतिपल बढ़ाते रहना चाहिए। उसको बढ़ा करके ही हम सहज में परमात्मा की और नाम के आनंद की प्राप्ति करेंगे। इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल बनेगा, जीवन धन्य होगा और जीवन में जो कमी हमारे को दिख रही है, ये कमी सारी कमी हमारी उस प्रकार लगने से दूर हो जाएगी, ऐसे सत्पुरुषों की कृपा से। तो यहाँ ये जो प्रश्न करने के माध्यम से कई प्रकार की बातें स्पष्ट करा दी कि तार्किक का प्रश्न भी होता है, वो तार्किक का प्रश्न भी अनेक प्रकार के हमारे सत्पुरुषों के साथ में जो संवाद होता है, तो वे सत्पुरुष कृपा करके केवल उनका भी समाधान नहीं करते हैं, हमारे जीवन में भी सुंदर समाधान के साथ में कल्याण का सुंदर तरीका प्रकट कर दिया करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के चरणों में और गुरु महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज का मध्यान्ह काल का विश्राम यहीं पर कर लेते हैं। अब आगे का प्रसंग, क्योंकि आगे कथा वगैरह चालू करने के लिए कथा की बातें आएगी, वो लगभग आधा घंटे के विश्राम के बाद में फिर वो प्रसंग चालू करेंगे। तब तक आवश्यक कार्यों से आप लोग भी निवृत्त हो जाएंगे और अपना जीवन सफल कीजिए। राम राम।
Saturday।
बोले आनंद कंद भगवान की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत कोट संत महात्मा।